कालेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवते मुक्तमश्लोके भक्तिर्भवति निश्चितिः।
श्रीमद्भागवतम् दशम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 42। अहम् मम असौ पतिः एषा मे सुतो ब्रजेश्वरस्य अखिल वित्तपः सती गोप्यः च गोपः सह गोधनः च मे यन् मायया इत्थं कुमतिः स मे गतिः। अहं ममासौ पतिरेष मे सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपाशति गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः। अहं ममासौ पतिरेष मे सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपाशति गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे जन्मायेत्थं कुमति स मे गतिः।
तो
अहम ममासौ पतिरेषु मे सुतौ ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपाठति गोप्याश्च गोपाश गोधनश्च मे जन्मारेतं कुमतेश मे गति अहं ममासौ पतिरेश मे सुतौ ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपाशति
गोप्यश्च सारी गोपियाँ
गोपा
सारे ग्वाले
सहगोधना
गौवें और बछड़े
समेत
मेरे संपत्ति हैं। यत माया ऐसी सारी वस्तुएं जिन्हें मैं कहती हूँ आखिर भगवान की कृपा से प्राप्त है। इत्थम इस प्रकार कुमति ही मैं झूठे ही सोचती हूँ कि मेरी संपत्ति है।
वे
मैं एकमात्र मेरे गति ही आश्रय है शरण है। अनुवाद तात्पर्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह तो भगवान की माया का प्रभाव है जो मैं मिथ्या ही सोचती हूँ कि नंद बाबा मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है और चूंकि मैं ही नंद महाराज की महारानी हूँ इसलिए गौवें बछड़ों की संपत्ति मेरे अधिकार में है और सारे ग्वाले और उनकी पत्नियां मेरी प्रजा है। वस्तुतः मैं भी भगवान के नित्य अधीन हूँ, वे ही मेरे चरम आश्रय हैं। तात्पर्य माता यशोदा के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए हर व्यक्ति को इस त्याग वृत्ति का पालन करना चाहिए। हमारे पास जितनी भी संपत्ति ऐश्वर्य अथवा जो कुछ भी होता है वह हमारा नहीं अपितु भगवान का है, जो हर एक का परम आश्रय तथा स्वामी है। भगवद गीता 5:29 स्वयं भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति ब्रह्मशति। साधु लोग मुझे ही समस्त यज्ञों और तपस्याओं का चरम कारण, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। हमें अपनी संपत्ति पर गर्व नहीं होना चाहिए, जैसा कि माता यशोदा ने यहाँ पर कहा है, मैं न तो संपत्ति की मालकिन हूँ, न नंद महाराज की ऐश्वर्यवान पत्नी हूँ। राज्य संपत्ति गौवे बछड़े तथा गोपियों जैसी प्रजा एवं ग्वाले मुझे दिए गए हैं। मनुष्य को मेरी संपत्ति मेरा पुत्र और मेरा पति, इस प्रकार का विचार त्याग देना चाहिए। जनस्य मोहो यमहम ममेति। हर वस्तु भगवान की है और किसी की नहीं। केवल मोहवश हम गलत सोचते हैं मैं हूँ या हर वस्तु मेरी है। इस तरह माता यशोदा पूर्ण रूपेण भगवान की शरणागत हो गई। क्षण भर के लिए वे निराश होकर सोचने लगी, दान तथा पुण्य कर्मों द्वारा अपने पुत्र की रक्षा करने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। एक क्षण के लिए माता यशोदा के मन में आया कि ये तो ईश्वर है, जगत का रक्षक है, इसकी रक्षा के लिए आज तक मैंने जितने भी ब्राह्मणों को वैष्णवों को दान दिया भोजन कराया ये सब तो मेरा भ्रम था, ऐसा मन में आया। प्रत्येक परिस्थिति में चाहे वो शकटासुर आया हो, चाहे पूतना वध किया हो, तृणावर्त वध किया हो, या इस अध्याय में गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया हो, प्रत्येक परिस्थिति में अपने पुत्र की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए, अभ्युदय के लिए माता यशोदा और नंद बाबा बहुत बहुत दान देते थे। दान देने का लक्ष्य उद्देश्य एक ही था कि मेरा जो पुत्र है कृष्ण है उस पर किसी भी प्रकार का संकट, किसी भी प्रकार का ग्रह न आए। परंतु आज जब माता यशोदा ने अपने पुत्र लाला के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया तो वो सोचती है कि ये तो जगत का रक्षक है, इसकी रक्षा क्या करनी। आज तक मैंने जो कुछ भी शुभ कर्म किए अपने पुत्र के अभ्युदय के लिए, विकास के लिए, ये सब मेरा भ्रम था। लेकिन वास्तव में यह जो विचार माता यशोदा के हृदय में आया है यही सबसे बड़ा भ्रम है। यह भ्रम है कि कृष्ण मेरे पुत्र नहीं है। दान तथा अन्य पुण्य कर्मों द्वारा अपने पुत्र की रक्षा करने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। भगवान ने मुझे बहुत सारी वस्तुएं प्रदान की है किंतु जब तक वे हर वस्तु का भार अपने ऊपर नहीं ले लेते तब तक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। जैसा कि प्रहलाद महाराज स्कंद 7 अध्याय 9 19वें श्लोक में कहते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह। माता पिता अंततः अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो यमहम ममेति। श्रीमद् भागवत 5:5-8। मनुष्य की भूमि, घर, संपत्ति तथा उसके पास जो कुछ भी है वह सब भगवान का है, यद्यपि हम भूल बस सोचते हैं कि यह मैं हूँ और ये सारी वस्तुएं मेरी हैं। श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। इस श्लोक में माता यशोदा के ब्रह्मांड स्वरूप दर्शन करने के बाद जो ऐश्वर्य की भावना आई है और माता यशोदा की स्थिति बहुत ऊंची है, कृष्ण मेरे पुत्र है, मैं उनका रक्षक हूँ, इसका पालन करना चाहिए, ये अभी मूर्ख है, अज्ञ है। आज तक ये भावना थी माता यशोदा के हृदय में, परंतु मिट्टी खाने की लीला, मृद भक्षण लीला भगवान ने दिखाया। इस लीला का बहुत सुंदर तात्पर्य है। भगवान खेल खेल में, आप सब जहाँ गए हैं मन ही मन महावन गोकुल की गली में पहुंचिए, 84 खंभों के बीच नंद बाबा का महल है और उस महल के आसपास श्री यमुना जी अपने कलकल छल छल धारा से प्रवाहित होते हैं। बच्चे प्राय खेल में मस्त रहते हैं, अनेक प्रकार का खेल, कबड्डी जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। बच्चे खेल कूद में मस्त ही रहते हैं, खेलना एक आनंद है और भगवान आनंद स्वरूप हैं, इसलिए बच्चों के अपने भक्तों के बीच स्वयं भगवान आनंद लेते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। वृंदावन में वर्णन है, बच्चे रात तक नंद रानी के नंद बाबा के महल में रहते थे। कब तक? जब तक जबरदस्ती माता जो सुधा उनको बाहर नहीं कर दी। घबरा जाती थी, कम से कम कुछ तो सो जाने दो इसको। और ब्रजवासियों का, गोपों का इतना प्रेम था कि वो यही चाहते थे कि हमेशा इसको देखते रहें, इससे बात करते रहें, इसके साथ खेलते रहें। इसलिए दिन भर तो साथ में रहते ही थे, रात को भी संग नहीं छोड़ते थे, तो जबरदस्ती उनको भगाना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि अभी 10 बजे सोने के लिए गए तो इन बच्चों को नींद नहीं आती, और अपने भगवान से आराध्य इष्ट देव से यही प्रार्थना करते रहते कि कब सुबह हो जाए। कोई कोई गोप तो इतना आवेश में होते थे कि 2 बजे 3 बजे ही जाकर कहते थे, उठो उठो सुबह हो गया, खेलने का समय हो गया। इस तरह से कृष्ण के साथ रहने का सुख आनंद लेने के लिए सारे बच्चे, बच्चों का इतना बड़ा सुंदर प्रेम, गोपों का इतना बड़ा प्रेम कृष्ण के प्रति है। खेल खेल में एक दिन श्याम सुंदर ने मिट्टी खाने की लीला, चैतन्य महाप्रभु ने भी ये लीला किया, मृद भक्षण लीला। घर के किनारे जहाँ योग पीठ है आप गए हैं, उसके सामने ही मिट्टी जाकर के खा रहे थे, एकांत में खा रहे थे। कुछ लोगों ने आकर माता सती से कहा कि मैया ये मिट्टी खा रहा है। तो सती माता जाकर कान पकड़ ली और उन्होंने कहा क्यों मिट्टी क्यों खा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैया सारा दुनिया मिट्टी खा रहा है और तुम भी हमको रोज मिट्टी खाने के लिए देती हो, आज मैं मिट्टी खा लिया तो क्या क्या अपराध किया। मैया ने कहा मिट्टी नहीं, तुमको सुंदर सब्जी फल दूध दही ये सब खाने को मिलता है, मिट्टी कब देती हूँ। बोले मैया ये सारे जितने भी फल हैं, दूध हैं, साग है, सब्जी कहाँ से निकला है, सब तो मिट्टी ही निकला है ना। मिट्टी चावल बन जाता है, मिट्टी सब्जी बनता है, मिट्टी दही बनता है, दूध बनता है, तो चाहे वो मिट्टी खाओ चाहे ये मिट्टी खाओ, दोनों में क्या अंतर है। एह माटी सेह माटी की भेद विचार, चैतन्य महाप्रभु कहते वो भी मिट्टी है ये भी मिट्टी है, तो मिट्टी मिट्टी होता है, इसमें क्या अंतर है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब तो एक ही है माता, इसमें भेद करना अच्छा नहीं है। तो माता सती ने समझाया कि बेटा ये डायरेक्ट मिट्टी खाओगे तो तुम्हारे पेट में कीड़े हो जाएंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तुम बीमार हो जाओगे, और मिट्टी के विकार को यदि तुम ग्रहण करते हो तो तुम्हारा शरीर पुष्ट होगा। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अच्छा मैया तो तुम्हें पहले बताना चाहिए ना, अब आज के बाद मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा, केवल तुम्हारे स्तन का दूध ही पीऊंगा, ठीक है। तो माता सती ने कहा ठीक है बेटा, आज के बाद कभी मिट्टी मत खाओ। भगवान ने भी मृद भक्षण लीला खा किया और बड़ी प्रेम से एकांत में खा रहे हैं। जानते हैं लीला क्या हो रही थी। अब ये सब लीलाएं, ये सब काम बचपन में जो गांव में रहा है, इसलिए महाराज जी बार बार कहते हैं भागवत समझने के लिए ना गांव में रहना बहुत आवश्यक। जिनका बचपन गांव में बीता है, जिन बच्चियों का या जिन पुरुषों का, वो ठीक ठीक समझ सकते हैं। अब शहर में बिता है तो वो तो टेलीविजन देखेंगे, टेलीविजन में ये हीरो, ये एक्टर, ये सीरियल, ये वो। परंतु गांव के बच्चों का सीरियल क्या होता था, 10-5 मिल करके एक गुड़िया बनाते थे, एक गुड्डा बनाते थे, एक लड़का और एक लड़की, और उसका विवाह करते थे। और छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन, आप सब लोगों को सही बात है माता, और बच्चियां अपने हिसाब से मंगल गीत गाती थी, दोनों का विवाह कराती थी और भोज भी होता था, बहुत सुंदर भोजन पानी की व्यवस्था, और दूसरा कुछ नहीं होता था, मिट्टी ही भोजन होता था, मिट्टी ही गुड़िया होती थी, मिट्टी ही कपड़े होते थे, सब ये। और भावना होती थी कि मैं ये लड़की का पिता हूं, तो मैं माँ हूं, तो मैं ससुर हूं, तो बड़ी आनंद से। और मुझे तो याद है मिट्टी का बर्तन है, उसी में एक करछुल भी मिट्टी का ही, लकड़ी का ऐसे बनाकर, कि भोजन बन रहा है, इधर गीत गाना चल रहा है, इधर ये चल रहा है, तो इस तरह का आनंद देहातों में होता था। भगवान भी इस तरह का आनंद खेल खेल रहे थे, तो खेल खेलने में यह हुआ कि एक पक्ष बाराती है तो वो भोजन करेगा, और जो कन्या पक्ष वाले हैं वो भोजन कराएंगे। तो भोजन करते 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 कुछ बच्चे जो समझदार होते हैं ना, वो केवल मुंह से बाहर ही मिट्टी रखते हैं, है ना सर, और मुंह चलाते हैं कि खा रहा हूं, खाने की लीला। तो इस तरह से सब बच्चे कर रहे थे, और यही लीला हो रही थी कि विवाह शादी का लीला था, और उसी में झूठे खा खा करके बाहर ही मुंह से उसको रख देना, भीतर नहीं करना। लेकिन इधर श्याम सुंदर की लीला तो बड़ी विचित्र हुई, वो सही में खाने लगे। बच्चों ने कहा चलो चलो, मैया से कहता हूँ, श्री बलराम जी ने भी कहा, अरे जाओ कह देना, बारात में बैठे हैं, भोजन मिला है तो इसमें क्या अपराध है, खाना पड़ेगा। भोजन प्रारंभ हुआ, कुछ संतों का विचार है, एकांत में जाकर ठाकुर जी मिट्टी खाने लगे, और कितना प्रिय है भगवान को ब्रजभूमि, ब्रज का रज भगवान को कितना प्रिय है, भगवान अपने समस्त श्रीअंग में उस ब्रजरज को तो लगाते ही हैं, भोजन के रूप में, आहार के रूप में भी भगवान उसको ग्रहण करते हैं। भगवान ने ब्रज का रज खाया, ब्रज की रज में रज होए के मिलूं, ब्रज में चार चीज प्रसिद्ध है, उसमें एक ब्रज का रज, ब्रह्मा शिव और शेष भी जिनके जिन रजों की प्रार्थना करते हैं, जिस रज को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, ब्रजवासी संत लोग कहते हैं कि सारे जगत को मुक्ति प्रदान करने वाली मुक्ति भगवान के आश्रय में गई, और बोले अब सबको मुक्त करते करते थक गई हूँ, अब आप ये बताओ श्याम सुंदर मेरी मुक्ति कैसे होगी। भगवान ने कहा बस इतने छोटे से प्रश्न है, अरे यदि ब्रज का एक भी रज तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो हे मुक्ति तुम मुक्त हो जाओगे। ब्रज रज उड़ी मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त हो जाए। ऐसे परम दुर्लभ रज को जिन्हें लगाने में भगवान गर्व गौरव महसूस करते हैं, गोचारण करने में जाते समय या गायों के खुर से उड़े हुए धूल, ब्रज का रज जब भगवान के श्री विग्रह पर लगता है, सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन करते हैं, भगवान तो ऐसे ही परम सुंदर हैं, परंतु उस रज से मिश्रित श्री विग्रह, श्री मुखारविंद का दर्शन जब होता है तो भगवान की शोभा में चार चांद लग जाते हैं। परम सुंदर, कितना प्रेम देखिए, भगवान आज तक कोई पाउडर नहीं, कोई कॉस्मेटिक्स, लिप स्टिक, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं। भगवान का ब्रज में सबसे बड़ा यदि सौंदर्य प्रसाधन है, सुंदर बनने का साधन है, तो एक है ब्रज का रज और दूसरा है एक पक्षी के पंख को ठाकुर जी धारण करते हैं और यही उनकी सबसे सुंदर सौंदर्य। खा लिया बच्चे गए माता यशोदा से कहा, तेरे लाला ने भैया मिट्टी खाया है। माँ यशोदा आई और पूछने लगी, खाया? कहते ना हम भक्षितवान अम्ब। माँ भला तुम बताओ हमारे घर में कितना सुंदर सुंदर पदार्थ है, मिट्टी खाएंगे? अहम न भक्षितवान। अब बताइए सारे देवता वेद ब्रह्म जिनकी प्रार्थना सत्य के रूप में करता है, श्रीमद् भागवत सत्यम परम धीमहि जिसको कहता है, दशम स्कंध में देवता प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम। सत्य है, त्रिसत्य है, ऋत सत्य है, सत्य ही भगवान है, सत्य ही कृष्ण का स्वरूप है। ऐसे परम सत्य भगवान से पूछा गया, खाया? तब क्या कहते हैं? नाहम भक्षितवान, अहम न भक्षितवान। तो क्या वास्तव में भगवान झूठ बोल रहे हैं? भगवान झूठ बोल ही नहीं सकते, भगवान जो बोलते हैं वही सत्य होता है। महाराज जी उस दिन कह रहे थे भगवान अन्याय अधर्म हो ही नहीं सकता है, जैसे सूर्य में रात्रि का प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसे चाहते हुए भी भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते। तुमने नहीं खाया? बोले नहीं, हमने नहीं खाया और न तो खाते हैं। तो कुछ गोप ग्वाल थे, बोले झूठ बोलते हो, हमारे ही साथ ब्रज के घर घर में जाकर चुरा कर खाते हो। खाते ही नहीं हो, घर का तो खाते ही हो, चुरा करके भी खाने की आदत है और कहते हो कि हम न भक्षितवान, मैंने नहीं खाया। किसने खाया? तब भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे, मैंने नहीं खाया है, किसने खाया है? ये इन सब लोगों ने खाया है। भगवान ने कहा मैंने केवल नहीं खाया, सर्वे इन सब ने खाया है। केवल सब ने मतलब ये गोप ग्वाल नहीं, मैया ये पूरे ब्रह्मांड के जीव हमसे प्रार्थना करते थे कि हे कृष्ण ऐसी कृपा कब होगी कि हमें ब्रज का रज प्राप्त होगा, बड़े बड़े ब्रह्मा शिव सनकादि नारद देवता अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीव चाहते थे कि हमें ब्रज का रज प्राप्त हो जाए, इसलिए मैया खाया तो मैं हूँ लेकिन मैं अकेले नहीं खाया हूँ और मैं नहीं खाया हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं है, मैं नहीं खाया हूँ, ये सब खाए हैं। तो मैया यशोदा ने कहा कि तो ये सारे गोप ग्वाल कह रहे हैं, तो कहें सर्वे मिथ्या विशंसी, नहीं ये सब पक्का नंबर वन के झूठे हैं। एक हरिश्चंद्र मैं ही हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये सब झूठे। चंद्र तरे, सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र के तरे न सत्य विचार, मैया केवल मैं हरिश्चंद्र हूँ सत्य बोल रहा हूँ, बाकी ये सब झूठे। तो मैया ने कहा यदि सत्य गिरस्त रही, यदि ये बात सत्य है कि तुमने नहीं खाया है तो मुखम दिया दे, मुंह खोलो प्रत्यक्ष दिखाओ। तो भगवान ने दिखा दिया, देखो मैं नहीं खाया हूँ, ये जितने ब्रह्मांड तारे अनंत तारे नक्षत्र ग्रह पर्वत समुद्र ये जितने भी जीव हैं इन सब की इच्छा को मैंने पूरा किया है। ये सब बहुत समय से डिमांड कर रहे थे कि ब्रज का राज्य हमें कब प्राप्त होगा। तो मैया ये सब खाए हैं और भगवान ने दिखाए। राधा गोविंद महाराज का स्मरण करते हैं, वो कहते हैं आज के भगवान से यदि कोई कहे कि मुंह में ब्रह्मांड दिखाओ तो क्या दिखाएगा? एक मांस का छोटा सा टुकड़ा जिसको जीभ कहते हैं और 10-20 हड्डी है, दांत क्या है, बहुत अच्छी चीज नहीं है वो, एक प्रकार का हड्डी है, है? 10-20 हड्डी और थोड़ा सा मांस का टुकड़ा उसके मुख में दिखेगा, परंतु कहता है कि मैं भगवान हूँ। भगवान अपना मुंह खोले तो उन्होंने सारे ब्रह्मांड को विश्व का प्रदर्शन कर दिया, ये भगवान होता है। तो बंधुओं इस श्लोक में माता यशोदा ये कहती हैं कि हमारा जो भ्रम था कि ये मैं यशोदा हूँ, पूरे ब्रजेश्वरी हूँ, ब्रज की ईश्वरी हूँ, और मैं ब्रजेश्वर नंद बाबा के अखिल वित्त का पाप, अखिल माने संपूर्ण वित्त धन के की पालन करने वाली हूँ, मालकिन हूँ, ये मेरा भ्रम था कि ब्रज के ईश्वर नंद बाबा हैं और मैं उनकी धर्मपत्नी सती हूँ, इसलिए मालकिन मैं हूँ और ये कृष्ण मेरा पुत्र है, ये मेरा भ्रम था। इसके पहले गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया है इस अध्याय में, तो गर्गाचार्य जी कह रहे थे नाम रखा, इसका नाम कृष्ण है, ये चारों युगों में प्रकट होता है, यह पूर्व काल में वसुदेव प्राक अयम वसुदेवस्य जात खलु तवात्मज, नंद बाबा ये आपका पुत्र पूर्व जन्म में कभी वसुदेव जी का भी पुत्र बना है। गर्गाचार्य जी ने ये नहीं कहा कि इसी जन्म में ये वहां था और आपके यहाँ आया है। चारों युगों में गृहण तो अनुजुगम तनु, प्रत्येक युग में ये आपका पुत्र आता है। शुक्लो रक्तस तथा पीतम इदानीम कृष्णताम गता। अब ये सब कहते 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 नंद बाबा ने कह दिया कि नारायण, कहना ये चाहते थे कि ये साक्षात नारायण ही पुत्र बना है। तब तक भगवान ने धीरे से इशारा किया है क्या करेंगे, हमें नारायण बनाओगे तो एक अलमारी में यशोदा मैया रद्द करके और केवल अगरबत्ती दिखाएगी, और प्रातः काल उठते ही जो मैया ताजा माखन और मिश्री खिलाती है, मेरा ये पुत्र है, इसको सजाना है, स्नान कराना है, रक्षा करनी है, हैं, मेरे गोद में खिलाना है, ये सब मेरा सुख समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही कहोगे कि भगवान है तो तुरंत एक मंदिर के अंदर बंद करके और घंटी बजा करके भोग लगेगा, उतना ही हाथ लगेगा। इसलिए सावधान, नारायण कहा आगे कुछ मत कहना। भगवान ने इशारा दिया तो उसी समय गर्गाचार्य जी ने कहा नारायण समो गुणैः, मैया इस तुम्हारे पुत्र में नारायण के समान गुण है। और दूसरा अर्थ इसका है ये भी कह दिया कि इसके समान केवल नारायण ही है, दूसरा कोई नहीं। तो बात पहले ही खुलने वाली थी लेकिन भगवान ने खोल दिया, विश्व रूप जब दिखाया, एक ब्रह्मांड दिखाया, उसके अंदर ब्रज दिखाया, उसके अंदर नंदगांव महावन दिखाया, 84 खंभे के अंदर एक कृष्ण को भी दिखाया और जसोदा को भी दिखाया, तब मैया जसोदा का जो भ्रम था ये समाप्त हो गया। तब कहते हैं कि जिनकी माया से इस प्रकार इत्थम कुमति ही, इस प्रकार के कुत्सित मते, खराब मते, कि ये मैं हूँ, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये गोप गोपी सब मेरे हैं, मैं मालकिन हूँ, इस तरह की कुमति यन माया, जिनकी माया शक्ति से उत्पन्न हुई है, ऐसे भगवान ही हमारे आश्रय हैं, भगवान के शरणागत। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय में बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं और तात्पर्य लिखते हुए कहते हैं कि सबको एक बात ध्यान रखिए, माता जसोदा जो ये सोच रही है, माता जसोदा का ये सोचना ही भ्रम है। वो कह रही है कि इस प्रकार की कुमति जिनकी माया से उत्पन्न होता है सबके हृदय में, परंतु आप विचार करो कृष्ण मेरे पुत्र हैं, क्या ये भगवान की माया है? यदि माता जसोदा की बात सत्य है कि जिनकी माया से ऐसा मैं सुतः, ये मेरा पुत्र है, माता जसोदा कहती है ये भगवान की माया से कुमति, खराब मति हमारे अंदर आ गई थी कि मेरा पुत्र है, तो क्या ये खराब मति है? मैया जसोदा के लिए ये श्लोक, ये विचार बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ जसोदा माँ है और कृष्ण उसके पुत्र हैं, भगवान इसी वात्सल्य रस का स्वादन करने के लिए ब्रज में आए हैं। बंधुओं, वैकुंठ में, गोलोक में भी भगवान की सभी लीलाएं होती हैं, परंतु बाल लीला का आस्वादन और अवतार लेने का आस्वादन भगवान को गोलोक में नहीं मिलता है। नित्य किशोर वयस के 16 वर्ष के सुंदर अवस्था में ठाकुर हैं, रास करते हैं, रास लीला वहां उपलब्ध है, परंतु बाल लीला का आस्वादन, वात्सल्य सुख का आस्वादन करने के लिए तो ब्रज में ही आना पड़ता है। और अपने माता पिता वसुदेव नंद जसोदा को, वसुदेव देवकी को छोड़ करके जिस सुख को लेने आए हैं, उस सुख के प्रति माँ जसोदा कहती है ये तो मेरी कुमति थी, और ये कुमति आई कहाँ? जिन प्रभु की, नारायण की माया से इस प्रकार हमारे अंदर कुमति आई, वे भगवान ही हमारे शरण हैं, अब हमको ज्ञान हो गया। अर्जुन भी इसी तरह का कहे, शुरू शुरू में तो दांत के कहा सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापय अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो, ड्राइवर को जैसे आदेश देते हैं। और 10वें अध्याय में जैसे ही भगवान ने विश्व रूप दिखाया, यह देखो सब कुछ मेरे अंदर है, तब अर्जुन थर 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 कांपने लगे और कहते सखे तिमत्वा वृषभम यदुक्तम, आज तक मैंने हे सखे हे जादव हमने जो कुछ भी आपको कहा मैं समझ गया, आज ये सब मेरा भ्रम था। अर्जुन की स्थिति बहुत ऊंची थी, वही ठीक स्थिति थी, लेकिन ऐश्वर्य देखते ही भगवान का स्नेह शिथिल हो गया। ब्रजवासी कभी भी ऐश्वर्य से ऐश्वर्य युक्त प्रेम नहीं करते, उनका वात्सल्य सख्य और मधुर प्रेम है ब्रज में, परंतु जैसे ही ऐश्वर्य देखा, ये मेरे पुत्र के अंदर इतने बड़े देवता इंद्र चंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा, ये सबके सब इसके इसे प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा आदमी है। बंधुओं, भगवान भगवान कहला करके घबरा जाते हैं। चेतन चरितामृत में लिखा है कि भगवान आप ईश्वर हो, जगत के नाथ हो, जगन्नाथ हो, तो क्या करो? सुख संपत्ति आ जाए, क्योंकि आप ईश्वर हो, दे सकते हो, तो आप दो। महाराज जी कहते हैं भगवान भी इस तरह से बाप बनकर जगन्नाथ बनकर घबरा जाते हैं, तब उनके मन में इच्छा होती है कि कोई मेरा बाप बन करके मेरा पालन करता, कोई माँ बन करके मुझे कंट्रोल करता, ये ठीक नहीं किया, क्यों खाया, छड़ी उठाता, डांटता और समझता कि ये मूर्ख है, तो बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान ऐश्वर्य वाला बनकर घबरा जाते हैं। जैसे आज जो बूढ़े हो गए हैं ना, उनको याद आती होगी कि मैं छोटा था तो पिताजी से मांगता था, और आज बच्चे ऐसे हैं जो केवल मांग ही रहे हैं, पिता से लेते हैं लेते हैं लेते हैं, तो बाप भी घबरा जाता है, वो कितना सुंदर समय था जब हमारे पिता थे, उनसे मैं लेता था, उनके गोद में खेलता था। भगवान भी इस तरह वात्सल्य सुख का आस्वादन करने के लिए ब्रज में आए हैं, और उस वात्सल्य सुख को प्रदान करने वाली माँ कहती है कि ये मेरा भ्रम था कि मैं पुत्र मान रही हूँ। भगवान कहते हैं माता मेरे पुत्र भावे करे न लालन, अति हीन ज्ञाने करे लालन न पालन, ये मूर्ख है, इसको ठंडा लग जाएगा, गर्म वस्तु देना है, गर्मी में ठंडा देना है, कैसा वस्त्र पहनाना है, कहाँ, बार बार समझाती थी वृंदावन जाने में मैया यशोदा, बलराम दिखना देखना ये कहीं पेड़ पर न चढ़ने लगे, कहीं जानवरों के साथ न खेले, कहीं नदी में तालाब में सरोवर में ये कूद न जाए, ध्यान रखना इसको, सारे संसार का ध्यान भगवान रखते हैं, लेकिन भगवान भी ब्रज में इस भाव का आस्वादन करने के लिए आते हैं कि कोई मेरा ध्यान रखे, जगत की रक्षा करते हैं, लेकिन इस भाव का आस्वादन करना, ब्रजवासी हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे लाला की हमारे कन्हैया की रक्षा हो। परंतु आज ब्रह्मांड देख करके माता यशोदा सोच रही है मेरा भ्रम था, ये हमारी कुमति थी, गलत मति खराब बुद्धि आ गई थी कि मैं इसको पुत्र मान रही हूँ। भगवान ने देखा ये तो बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, तो तुरंत अगले ही क्षण उन्होंने अपनी वैष्णवी माया का व्यतिपात किया, और वैष्णवी माया जैसे ही आई तत्काल मैया यशोदा भूल गई कि ये ब्रह्मांड है, कि ये कृष्ण है, कि ये ईश्वर है, कहने लगे अरे मेरा लाला तो भूखा होगा, जल्दी से इसको दूध पिलाना चाहिए, और दूध पिलाने लगे। परंतु इस श्लोक में माता यशोदा ऐश्वर्य भाव में मधुर भाव को भूल गई। ब्रज में कभी ऐसा होता नहीं है, ब्रज में भगवान ने बहुत लीला की, सांप के 1000 फण पर नृत्य किए, 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज गोवर्धन धारण किया, अघासुर को, बकासुर को, तृणावर्त को, शकटासुर को, बड़े बड़े असुरों का वध किया, परंतु फिर भी ब्रजवासी ये नहीं माने कि ये भगवान। कभी कभी लीला देखकर थोड़ा थोड़ा भ्रम आता था, कहीं ये ईश्वर तो नहीं है। गिरिराज धारण लीला के बाद में ब्रजवासियों ने मीटिंग किया, आखिर ये है कौन, समझ में नहीं आता। तो इस इतना ऐश्वर्य युक्त लीला के बाद भी ब्रज में ऐश्वर्य भाव नहीं होता है, सारे ब्रजवासी का एक ही भाव होता है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा सखा है, और ये मेरा प्रियतम है, ये हमारा प्राण प्रिय है, करोड़ों करोड़ों प्राणों से भी प्रिय हमारा श्याम सुंदर है, कृष्ण है, इसको प्रसन्न रखना है, इसकी रक्षा करनी है, इसे खुश रखना है। इस श्लोक के तात्पर्य विश्व प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तव में माँ यशोदा के लिए तो ये ठीक नहीं है, परंतु हम सब के लिए एक बहुत सुंदर शिक्षा है कि हमारे पास जो कुछ भी प्राप्त है, उपलब्ध है, ये अपना नहीं है। क्या अपना नहीं है? अज्ञान प्रारंभ होता है कि मैं ये शरीर हूं। कभी कभी अज्ञान होता है ये शरीर मेरा है ना, तो ये मेरा है, ये कुछ कम पॉइंट का अज्ञान है, परंतु धीरे धीरे अज्ञान जब बढ़ने लगता है तो ध्यान आता है कि मेरा नहीं, ये मैं ही शरीर हूं, अहम। और जब मैं शरीर हूं ये अज्ञान आता है, तब दूसरा ज्ञान आता है कि ये मेरे है। हम सब लोगों ने माँ के गर्भ में अपनी शरीर की रचना स्वयं नहीं किए हैं, और नहीं तो जिस माँ के पेट में बने हैं, हैं फैक्ट्री शरीर की कहाँ है, कितना सुंदर फैक्ट्री है, एक एक शरीर के भीतर हैं, एक उंगली के भीतर ऊपर से चमड़ा का कवर है, भीतर मांस है, उसके भीतर एक एक नसों का कनेक्शन, खून का अलग है, पानी का अलग है, वायु का अलग है, हैं? हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तब मेरा शरीर कैसे हो गया? जब हम बना नहीं सकते हैं तो शरीर मेरा कैसे? और यही अज्ञान जब वर्धित होता है तो मेरा मैं में बदल जाता है, मैं फलाना पटेल हूँ, और हमारा ये घर है, ये हमारा नाम है, ये हमारे बाप हैं। अहम खराब होते ही जितना भी मम है वो सब खराब हो जाता है। ये भगवान की माया है। तो वास्तव में ये शरीर ही मेरा नहीं है, ये भगवान का बनाया है, इसलिए शरीर से संबंधित जितने भी तत्व हैं वो सब भगवान के हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्वम का अर्थ है एक भी चीज तुम्हारा नहीं है, यहाँ तक कि तुम भी तुम्हारे नहीं हो। ममई वंशो जीव लोके, भगवान कहते हैं इसके भीतर जो अंश है, जो चला रहा है, देख रहा है, बैठा है, सुन रहा है, वो भी मेरा है, शरीर भी मेरा है, संसार भी मेरा है, परिवार भी मेरा है। फिर भी सुनने के बाद मेरा और मैं समाप्त नहीं होता, अहम ममेति। तो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, ये भगवान का है और वही इसके रक्षक है। हमारा होता तो हम इसमें बुखार नहीं आने देते, यदि हमारा शरीर होता तो हम इसे अपने अनुसार चलाते, बूढ़ा नहीं होने देते, रोगी नहीं होने देते, बुखार नहीं होने देते, लेकिन इस शरीर पर जिसे मेरा है कहते हैं, एक भी बस नहीं है। बचपन से युवक होता है, युवक से वृद्ध होता है, आंख की शक्ति, पैर की शक्ति चली जाती है, तो तुम्हारा शरीर है तो तुम्हारे अनुसार चलना चाहिए ना, परंतु कुछ भी हमारे अनुसार चलता नहीं है, इसके रक्षक भी भगवान है। और श्री प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं, प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में क्या कहते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह। हे नृसिंहदेव, वास्तव में माता और पिता मिलकर उसी बालक की रक्षा करते हैं जिस पर आपकी अनुग्रह है। जिस बच्चे की रक्षा आप करना चाहते हैं उसी को माता पिता बचा लेते हैं, और जिस बच्चे पर आपकी कृपा नहीं है तो वही बाप गोद में उठाकर ले जाकर मिट्टी में दबा देते हैं। यदि माता पिता ही रक्षक होते, अपने बच्चे के पालक होते, तो अपने हाथ से क्यों दबाते? परंतु वास्तव में वास्तविक पालक हमारा भी अहंकार है, ये मेरा बच्चा है, मैंने पालन किया है, इसको जिलाया है, खिलाया है। और प्रहलाद महाराज कहते ना ना, ये तुम्हारा परम। बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह, नारदस्य चागद मुदनवती मध्य तो नव। आर्तस्य च अगद का अर्थ होता है जो आर्त है, दुखी है, रोगी है, उस पर वही दवा काम करती है जिस दवा पर आपका अनुग्रह है। नहीं तो डॉक्टर भी फर्स्ट क्लास, दवा भी फर्स्ट क्लास, और रोगी भी फर्स्ट क्लास, लेकिन रक्षा नहीं होती। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नृसिंहदेव, वह दवा भी वही काम करती है जिस रोगी पर आपका कृपा है, आप जिसकी उपेक्षा करते हैं तो दवा और डॉक्टर सब फेल हो जाते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि प्रभुपाद जी से कोई बहुत बड़ा डॉक्टर मिला और उसने कहा कि प्रभुपाद हम लोग जगत की कितनी रक्षा करते हैं, लोग आह आह करते हुए कराहते आते हैं और हम उनको ठीक करके भेज देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हारे हॉस्पिटल में कुछ लोग मरते भी हैं क्या? डॉक्टर ने कहा हाँ, 10-5 लोग तो रोज मरते रहते हैं, 10-5 लोग रोज मरते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या पूछा कि उन मरने वालों के लिए कौन सा इंजेक्शन रखे? हमारे हॉस्पिटल में रोगी मर जाए, इनके लिए आपके पास कौन सी दवा है, क्यों मर जाते हैं? तो वो बोला गॉड विल, वो तो ईश्वर की इच्छा। बोले मर गए वो ईश्वर की इच्छा और अच्छे हो गए वो तुम्हारी इच्छा हो गई। वो अच्छे हो गए वो भी ईश्वर की इच्छा से हुआ है। लाभ हुआ तो क्या दिमाग लगाया मैंने इतने का, और घाटा के लिए क्या दिमाग लगाया था? आपको घाटा हो जाए, आपको नुकसान हो जाए, उसके लिए क्या दिमाग लगाया? इसलिए हानि लाभ जीवन मरण ये 6 चीज भगवान ने अपने हाथ में रखा है, किसी को दिया है। तो नृसिंहदेव कहते हैं वही दवा काम करती है रोगी पर जिस पर आपकी कृपा है, और वही नौका नदी को पार कर जाती है जिस यात्री पर आपकी कृपा है, और जिस पर आपकी कृपा नहीं है तो वह नाव ही उसको डुबाकर मार डालती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, तैरने वाले भी नाव में रहते हैं तो डूबकर मर जाते हैं। तैरने वाले क्या कारण है? बोले नाव उंधी होती है और पानी के वेग में वो नीचे तक चला जाता है, तैरने वाला भी फंस जाता है, और जिन यात्रियों पर कृपा है तो बिल्कुल सुरक्षित इस पार से उस पार वो नाव पहुंचा देती है, और जिस पर आपकी कृपा नहीं है तो वह नाव ही डुबा करके मज्जतो नौ, वह नौका ही डुबा कर मार देती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे सब कुछ भगवान का है और ये जीवन शरीर सब उनकी रक्षा में है। भगवान जब तक सुरक्षित रखे हैं तब तक है, और आज ही सुरक्षा हटा ले तो ये जेब सुरक्षा काम नहीं करेगी। बड़ी फेमस लोगों को यहाँ पर मिलता है जेब सुरक्षा, जानते हैं, परंतु भगवान की कृपा नहीं हो जिस पर तो वो रक्षा कर्मी ही भक्षा कर्मी हो जाते हैं। वो रक्षक ही बॉडी गार्ड ही बॉडी को खत्म कर देते। हम लोगों के सामने की घटना है, सन मुझे याद नहीं है, उसी दिन जगन्नाथ रथ यात्रा थी दिल्ली में, और पता लगा कि बॉडी के गार्ड लोगों ने ही बॉडी को खत्म कर दिया। इंदिरा जी की जो हत्या हुई उसी दिन रथ यात्रा था, रथ यात्रा लगभग पूरा हो चुका था, हम लोग कार से वृंदावन आ रहे थे। वृंदावन आने के बाद पता चला कि सुरक्षा गार्ड ने ही प्रधानमंत्री को खत्म कर दिया। जिनकी रक्षा के लिए जिनको आप धन दे रहे थे वही शरीर को खा गए। प्रहलाद महाराज कहते हैं मिला है वो कृष्ण का है, और रक्षा भी वही कर रहे हैं, जिस दिन रक्षा का कनेक्शन काट दें उसी दिन कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। मारे कृष्ण कोई बचा नहीं सकता, और भगवान जिसकी रक्षा करे उसे कोई मार नहीं सकता। शास्त्र सुनने का और पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि कृष्ण मोर, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव को ज्ञान हो जाए कि कृष्ण ही हमारे प्रभु हैं, कृष्ण ही हमारे त्राता है। कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे है ज्ञान, इतना ही विश्वास हो जाए वही हमारे प्रभु हैं और वही हमारे रक्षक हैं, संसार में न तो मैं किसी का रक्षक हूं और न हमारी रक्षा कोई कर सकता है। तो बाजी ये श्लोक दे रहे हैं, बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह, भगवान हमारे रक्षक हैं। परंतु ये जो श्लोक खास करके माता यशोदा जो अपना अनुभव सुना रही हैं, भगवान जिस सुख को लेने के लिए आए हैं कि कोई हमें अपना पुत्र माने, और ये बहुत हीन है, इसका पालन करना है, इसे ध्यान से रखना है, इसकी रक्षा करनी है, इस भाव का आस्वादन करने आए हैं, और वही भाव इस श्लोक में खत्म हो गया। माता यशोदा कहती हैं, ये हमारे बुद्धि का भ्रम था, खराब बुद्धि हो गई थी कि मैं पुत्र मांग रही थी। तो भगवान के लिए तो बड़ा खतरनाक भाव है, परंतु भगवान इस भाव को रहने नहीं देंगे। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वर वैष्णवीम व्यतनोत मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभु। जैसे ही अपने अंतरंगा शक्ति का सूत्रपात किया माता यशोदा के हृदय पर, तुरंत सब भाव भूल गईं और लाला को श्याम सुंदर को उठाकर गोद में सोचने लगी, वो भूख लगा होगा इसलिए मिट्टी खा रहा है। तुरंत स्तन पिलाया, माता यशोदा भी प्रसन्न और कृष्ण भी प्रसन्न, और सारे शिकायत करने वाले किनारे, एक शिकायत किए थे सब वैष्णवी यतनोत माया। इस तरह से भगवान ने ब्रज में लीला का आस्वादन और संपादन किया है। यहीं पर विराम करता हूँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उच्च स्वर से हो जाए, हरे कृष्णा।